Actually, there is really only one problem. Are the Arab states prepared, if not to welcome us?
वास्तव में असली समस्या सिर्फ एक है. क्या अरब देश इस बात के लिए तैयार है कि वो हमारा स्वागत भले ही ना करे, इस बात को तो कम से कम माने कि हमारा भी कोई अस्तित्व है और वो हमारे साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए तैयार हैं. जब कभी शांति आएगी तो हम शायद अरबों को इस बात के लिए माफ़ कर दें कि उन्होंने हमारे बेटों को मारा है, लेकिन हम उन्हें इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे कि उन्होंने हमें उनके बेटे मारने के लिए मजबूर किया है.
ये हैं गोल्डा मेयर, जिनके बारे में एक बार इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियों ने कहा था कि वो मेरे मंत्रिमंडल की अकेली पुरुष थी. और किसी संदर्भ में ये बात किसी भी महिला को अच्छी लगती, लेकिन इसको सुनते ही गोल्डा मेयर दांत पीसने लगती थी. उनका मानना था कि किसी भी काम को किसी शख्स के लिंग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. गोल्डा मेयर का जन्म 3 मई 1898 को यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ था. गोल्डा मेयर उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने 1948 में इसराइल की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे. 1965 में उन्होंने कई पदों पर काम करने के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था. 1969 में जब इसराइल के तीसरे प्रधानमंत्री लेवाई एशकॉल की मौत हुई तो उन्हें इसराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया. गोल्डा मेयर की नाती एलिस कोलंबो, जो कि इस समय अमेरिका में रहती हैं, बताती हैं.
She was very grandmother-like to everybody in Israel. I mean, look how she dressed, wearing those orthopedic black shoes.
वो पूरे इसराइल के लिए दादी अम्मा की तरह थी. ध्यान दीजिए वो किस तरह के कपड़े पहनती थी. उनके जूते हमेशा काले होते थे और वो जहाँ भी जाती थी उनके हाथ में उनका पुराना हैंडबैग होता था. वो चेन स्मोकर थी और उनके सिगरेट में कोई फिल्टर नहीं होता था. वो अक्सर लोगों से अपनी रसोई में चाय पीते हुए मिलती थी जिसे उन्होंने खुद बनाया हुआ होता. वो पुरुषों की घड़ी पहनती थी और अपने हाथ से सेब काटकर अपने मेहमानों को खिलाती थी.
1972 में एलिस काम करने इसराइल गई तो अपनी नानी प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के घर ठहरी. उनको उनकी ख्याति का अंदाजा तब हुआ जब वो उनके साथ एक कॉन्सर्ट देखने एक ऑडिटोरियम में गईं.
We entered from the back of the auditorium. The minute we hit the aisle and started walking towards our seat, the entire audience sensed that Golda was in the room.
हम ऑडिटोरियम में पीछे के दरवाजे से घुसे. जैसे ही हम बीच में आए और अपनी सीट की तरफ जाने लगे, लोगों को पता चल गया कि गोल्डा उनके बीच आ चुकी हैं. वो सब खड़े हो गए और जोर जोर से उनका नाम चिल्लाने लगे.
1971 में वो प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अमरीका गईं, जहां अमरीका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उनके बातचीत करने के अंदाज से बहुत प्रभावित हुए. बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा RN द मेमोयर्स ऑफ रिचर्ड निक्सन में लिखा.
मुझे अच्छी तरह याद है जब हम दोनों ओवल ऑफिस की कुर्सियों पर बैठे और फोटोग्राफर हमारी तस्वीरें लेने के लिए आए तो गोल्डा मुस्कुरा रही थी और दोस्ती भरी बातें कर रही थी. जैसे ही फोटोग्राफर कमरे से विदा हुए उन्होंने अपने दाएं पैर के ऊपर अपना बायां पैर रखा, सिगरेट सुलगाई और बोली, मिस्टर प्रेसिडेंट आप बताइए आप उन विमानों के बारे में क्या करने जा रहे हैं जिनकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है. गोल्डा मेयर का व्यवहार एक पुरुष की तरह था और वो चाहती थी कि उनसे पुरुषों की तरह ही सलूक किया जाए.
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गोल्डा मेयर ने गुप्त रूप से भारत को सैनिक सहायता पहुंचाई थी, जबकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध नहीं थे. अमरीकी पत्रकार गैरी जे बास ने नेहरू लाइब्रेरी में रखे हक्सर पेपर्स का हवाला देते हुए अपनी किताब ब्लड टेलीग्राम में लिखा है,
पीएन हक्सर के प्रयासों के बाद इसराइली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने एक इसराइली शस्त्र विक्रेता श्लोमो जाब लुदोविक्स को पत्र लिखकर भारत को मोर्टार और कुछ हथियार पहुंचाने के लिए राजी किया था. इन हथियारों के साथ कुछ इसराइली प्रशिक्षक भी भारत भेजे गए थे. मेयर ने इच्छा प्रकट की थी कि इसके बदले भारत इसराइल को राजनीतिक मान्यता दे, लेकिन भारत ने विनम्रतापूर्वक उस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था. लेकिन 20 साल बाद नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत और इसराइल के बीच राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे.
1972 में जब म्यूनिख ओलंपिक में अरब चरमपंथियों ने 11 इसराइली ओलंपिक खिलाड़ियों को मार डाला तो उन्होंने मोसाद के एजेंटों को आदेश दिया कि इस अपराध करने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चुन चुन कर मारा जाए। इस ऑपरेशन को रैथ ऑफ गॉड का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन पर एक किताब वन डे इन सितंबर लिखने वाले साइमन रीव लिखते हैं।
गोल्डा मेयर ने जनरल अहरून यारीव और जुई जमीर को अपने घर बुलवाया। उन्होंने पहले यहूदी लोगों की त्रासदी और जर्मनी में उनके साथ किए गए सलूक का जिक्र किया। फिर उन्होंने म्यूनिक का जिक्र किया, जहां 11 मासूम इसराइली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर उन्होंने एक आह भरी, अपना सिर उठाकर यारीव और जमीर की आंखों में सीधे देख मजबूत और साफ आवाज में कहा, सेंड फॉर द बॉयज।
1973 में मिस्र और सीरिया ने इसराइल के सबसे पवित्र दिन योम किप्पूर के दिन इसराइल पर हमला बोल दिया। कई लोगों ने कहा कि इस हमले को न रोक पाना गोल्डा मेयर की एक बहुत बड़ी असफलता थी। किंग्स कॉलेज लंदन के युद्ध अध्ययन विभाग के डॉक्टर एरिक ब्रैगमैन, जो कि इसराइली सेना में काम कर चुके हैं, बताते हैं,
शी बिलीव्ड दैट टाइम इज ऑन इजराइल्स साइड, दैट ओनली इफ इजराइल सिट टाइट।
गोल्डा को विश्वास था कि समय इसराइल के साथ है, अगर इसराइल धीरज रखे तो थोड़े दिनों में अरब इस बात के आदि हो जाएंगे कि साइनाई इसराइल का हिस्सा है और गोलान हाइट्स और पश्चिमी किनारा भी इसराइल का ही एक भाग है। मेरा ख्याल है कि उनकी ये सोच गलत थी। मैं एक नेता से उम्मीद करता हूँ कि उसकी नज़र उन चीज़ों पर जाए जिनकी तरफ हम जैसे साधारण लोगों का ध्यान नहीं जाता। मेरे विचार से उन्होंने 1971 में अरबों के दिए गए प्रस्ताव को मान लिया होता तो योम किप्पुर की लड़ाई नहीं होती, जिसमें इसराइल के करीब 3,000 सैनिक मारे गए। हमारे लिए वो एक दिल दहला देने वाली घटना थी।
इसराइल को 6 घंटे पहले ही पता चल गया था कि मिस्र और सीरिया उस पर हमला करने वाले हैं, लेकिन इसका जवाब किस तरह दिया जाए उस पर इसराइली सेना के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद थे। गोल्डा मेयर अपनी आत्मकथा माय लाइफ में लिखती हैं,
डाडो पहले हवाई हमला करने के पक्ष में थे क्योंकि ये साफ हो चला था कि लड़ाई तो होनी ही है। उन्होंने कहा कि हमारी वायुसेना दोपहर तक हमला करने के लिए तैयार होगी, बशर्ते आप इसी समय इसका आदेश दें। लेकिन मैंने पहले से ही अपना मन बना लिया था। मैंने कहा, डाडो, मैं इसके खिलाफ हूँ। हमें भविष्य के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है हमें बाहरी मदद की जरूरत हो, लेकिन अगर हम पहले हमला करते हैं तो हमें बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस प्रस्ताव को दिल से हाँ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें ना कहना पड़ रहा है।
उन दिनों का एक और चित्रण एलिनोर बर्केट ने गोल्डा की जीवनी में खींचा है।
मोशे दयान दौड़ते हुए गोल्डा के दफ्तर में घुसे और बोले, गोल्डा, मैं गलत था, हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप चाहें तो मेरा इस्तीफा ले लीजिए। गोल्डा ने इनकार कर दिया। जैसे ही दयान गए, गोल्डा एक हॉल में चली गईं। उनके सहयोगी लूक कार्डर ने देखा कि वो रो रही थीं। वो बोली, दयान हथियार डालने के बारे में कह रहे हैं, तुम मेरे एक दोस्त के घर जाओ, वो डॉक्टर हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो तुम्हें कुछ गोलियां दे दें जिनसे मैं अपने आप को मार सकूं, ताकि मैं जिंदा अरबों के हाथ न पड़ सकूं।
योम किप्पूर युद्ध में भले ही आखिरी जीत इसराइल की हुई हो, लेकिन उसके 3,000 सैनिक इस युद्ध में खेत रहे, और ये परिकल्पना हमेशा के लिए धराशायी हो गई कि उसे कभी नहीं हराया जा सकता। गोल्डा मेयर को समय से पहले अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैंने इसराइल में रह रहे भारतीय पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से पूछा कि उनकी मौत के 40 साल बाद इसराइल के लोग उन्हें किस तरह से देखते हैं।
देखिए, इसराइल में दो खेमे हैं। एक खेमा ऐसा है जो कि उन्हें बहुत ही मजबूत इरादे का नेता बताता है कि वो बड़ी बेबाकी से, बड़े स्पष्ट तौर से अपनी बात को रखती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन यहूदी कौम के लिए उन्होंने त्याग किया, या फिर इस राष्ट्र को निर्माण में या राष्ट्र को मजबूत बनाने में उनका जो योगदान है उसके ऊपर लोग काफी जोर देते हैं। यहूदी राष्ट्र के निर्माण के पहले ही काफी कुछ पैसे भी उन्होंने इकट्ठा किए, वो कई बार अमेरिका गईं, उस योगदान को लोग नहीं भुला पाते। लेकिन एक यहाँ पर छोटा सा खेमा वैसा भी है जिसे काफी उनसे शिकायत भी है। ये खेमा है उन यहूदियों का जो कि एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के राष्ट्रों से यहाँ पर आए, जिन्हें यहाँ पर मिजराकी या फिर शेफाडी यहूदी के तौर पर संबोधित किया जाता है। और ये जो खेमा है उसकी शिकायत ये है कि वो किसी हद तक उन्हें उन पर एक तरह का रेसिज्म का भी चार्ज लगाते हैं। वो ये कहते हैं कि गोल्डा मेयर नहीं चाहती थी कि इस तरह के लोग जो हैं, जो एशिया और अफ्रीकन डिसेंट के, वो इसराइल में बहुत ज्यादा आए। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है जिसको लेकर के यहाँ पर जो है उनकी काफी निंदा होती है, वो ये है कि इसराइल जो है उसे यहूदी राष्ट्र के तौर पर लोग यहाँ पर देखते हैं, भले ही वो घोषित यहूदी राष्ट्र ना हो। लेकिन यहाँ पर एक अलिखित नियम यह है कि कोई भी यहूदी जो है, चाहे वो जहां भी रह रहा हो दुनिया में, वो इसराइल आ सकता है, यहाँ इमिग्रेट कर सकता है। लेकिन गोल्डा मेयर जो है उन्होंने स्पष्ट तौर पर पोलैंड और कई ऐसे राष्ट्रों को यह संकेत दिया था कि उस तरह के यहूदी जो कि अब यहाँ पर जो इररिलेवेंट हो चुके हैं, जो कि यहाँ के वर्कफोर्स में आकर के खुद को नहीं सम्मिलित कर पाएंगे, उस तरह के लोगों को न आने की इजाजत दी जाए। इसको भी लेकर के उनकी जो है थोड़ी निंदा होती रही है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर लोग जो है उन्हें एक बहुत ही मजबूत इरादे के नेता के तौर पर देखते हैं।
75 साल की उम्र में भी गोल्डा मेयर 25 साल की युवती की तरह काम करती थी और उनका दिन सुबह 4 बजे समाप्त होता था। गोल्डा मेयर अपनी आत्मकथा माई लाइफ में लिखती हैं।
कभी कभी मेरे निवास के बाहर तैनात अंगरक्षक देखते थे कि सुबह 4 बजे भी मेरी रसोई में लाइट जली हुई है। उनमें से एक ये देखने के लिए अंदर आता था कि मैं ठीक ठाक तो हूँ ना। मैं हम दोनों के लिए चाय बनाती थी और हम तब तक अलग अलग विषयों पर बात करते रहते जब तक मुझे नहीं लगता कि अब मुझे सोने जाना चाहिए।
गोल्डा मेयर का सबसे अच्छा आकलन एडविना करे ने किया है। इनका मानना है कि गोल्डा एक इंसान थी जिनमें कुछ खराबियों के साथ साथ बहुत सारी अच्छाइयां भी थी।
आई थिंक देयर आर पीपल हु काइंड ऑफ लाइक टू इन्वेंट अ वंडरफुल लीडर, द परफेक्ट लीडर हु वाज एवरीथिंग, बट Real leaders are real people, and they have
इस तरह के लोग दुनिया में हैं जो एक महान नेता को इजाद करना चाहते हैं, इस तरह का नेता जिसमें कोई खोट ना हो। लेकिन वो असली लोगों का नेता नहीं होता, क्योंकि लोगों में अच्छाइयों के साथ साथ कुछ कमियां भी होती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम उनकी तारीफ करें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। गोल्डा भावपूर्ण थी, अपने देश के लिए प्रतिबद्ध थी, कठोर थी, और हालात से समझौता करना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं था। हाँ, उनसे भी कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो एक असली इंसान थी। वो महिला नहीं थी जिसका रोल किसी स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा था।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।